بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیابان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ। परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार है, फरवरी की 22, रजब की 10 और इस्फंद माह की 4 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आरंभ हम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा विश्व दर्पण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति ने तुर्क राष्ट्रपति को अमरीकी प्रतिबंधों से मुकाबले का नुस्खा सुझाया है। कल से ईरान एडिशनल प्रोटोकॉल पर अमल को रोक देगा। पांडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। भारत में पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बड़ी, कीमतों पर बवाल हो रहा है। और अब आप मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति हसन रूहानी का कहना है कि वाशिंगटन के एक पक्षी और गैर कानूनी प्रतिबंधों के मुकाबले का एक ही उपाय है, और वो है प्रतिबंधों का निशाना बनने वाले देशों का एकजुट हो जाना। रविवार को अपने तुर्क समकक्ष रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति रूहानी ने अंकारा पर वाशिंगटन के प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा, ईरान अपने पड़ोसी व मित्र देश तुर्की के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि एक पक्षी और गैर कानूनी प्रतिबंधों का मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता निशाना बनाने वाले देशों के बीच एकता और सहयोग है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी कार्यों का उल्लेख करते हुए रूहानी ने कहा कि प्रतिबंध हटाए जाने की मांग ईरान की एक कानूनी मांग है। जब ये मांग पूरी हो जाएगी तो ईरान परमाणु समझौते में अपने सभी वादों पर अमल शुरू कर देगा। ईरानी राष्ट्रपति ने तुर्क राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान सीरियाई संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर भी बल दिया।
ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख महमूद वायजी ने कहा है कि संसद का कानून 23 फरवरी से लागू होगा और आईएईए के पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को सीमित कर दिया जाएगा। वायजी ने कहा कि हमने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी है कि पूरक प्रोटोकॉल के बारे में संसद का कानून 23 फरवरी को लागू होगा। महमूद वायजी ने सोमवार को पूरक प्रोटोकॉल के संदर्भ में कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बता दिया कि ईरान में सरकार और अधिकारी सभी एकमत हैं कि इस कानून को व्यावहारिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सामने वाले पक्ष को ऐसा कोई बहाना नहीं दिया जिससे वो हमसे ये मांग करे कि हम कानून को लागू नहीं कर सकें। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख महमूद वायजी ने कहा कि इस कानून को 30 फरवरी को लागू होना चाहिए। उनका कहना था कि हम अपने वचनों के प्रति कटिबद्ध रहे हैं क्योंकि हमारी परमाणु गतिविधियां शांतिपूर्ण हैं और यही देश की आधिकारिक नीति भी है। वायजी के अनुसार हम परमाणु शस्त्रों के इच्छुक नहीं हैं और सेफगार्ड के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण को हम स्वीकार करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक ने तेहरान में अपनी वार्ता और मुलाकातों को सार्थक और तर्क संगत करार दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान और IAEA के बीच परमाणु केंद्रों के निरीक्षण जारी रहने के बारे में अस्थायी रूप से एक तकनीकी समझौता हो गया है। राफेल ग्रोसी ने तेहरान से वापसी के बाद वियना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तेहरान के साथ होने वाले समझौते के आधार पर ईरान में एजेंसी की आवश्यक गतिविधियां अगले 3 महीनों तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि इन 3 महीनों के बीच स्वतंत्र आधार पर दोनों पक्ष इस समझौते के अंतर्गत अंजाम दी जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते रहेंगे और उसके बाद फिर उनके जारी रहने या रोक दिए जाने के बारे में दोबारा फैसला किया जाएगा।
ईरान का कहना है कि कैदियों या दूसरे मुद्दों पर तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई भी सीधी वार्ता न तो हो रही है और न ही भविष्य में होगी। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने एक बयान में कहा कि ईरान और अमरीका के बीच कैदियों या दूसरे मामले के बारे में न तो कोई वार्ता हो रही है और न होगी। उन्होंने कैदियों के बारे में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की अफवाहों का खंडन किया और कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच इस बारे में या दूसरे मामले में कोई भी सीधी वार्ता नहीं हो रही है और न भविष्य में होगी।
पांडुचेरी विधानसभा में विश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई है। वहां के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज पांडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणा सामी ने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। उपराज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। इससे पहले विधानसभा में पांडुचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, उसके बाद हमने विभिन्न चुनावों का सामना किया, हमने सभी उपचुनाव जीते हैं। ये स्पष्ट है कि पांडुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं। ज्ञात रहे कि 6 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद नारायणा सामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। 2 विधायकों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वहां सियासी संकट और गहरा गया था।
भारत में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के दामों में वृद्धि ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज की कीमत 4,200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में 20 दिन के अंदर प्याज की कीमत 10 से 15 रुपए तक बढ़ी है। 19 फरवरी को प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो थी, जबकि 30 जनवरी को प्याज के दाम 39 रुपए प्रति किलो थे। इससे पहले बाजार में प्याज की कीमत औसतन 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक थी।
भारत के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा RSS के पूर्व प्रमुख की जयंती पर ट्वीट करने पर हुई आलोचना के एक दिन के बाद मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी विचारधारा को चुप कराने में विश्वास नहीं रखता। एक दिन बाद 20 फरवरी को मंत्री के मीडिया सलाहकार नितिन त्रिपाठी ने ट्वीट करके कहा था कि भारत दुनिया में सांस्कृतिक रूप से विविध राष्ट्र है और बहु सांस्कृतिक का प्रतीक भी है। संस्कृति मंत्रालय समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी विचारधारा या आवाज को चुप कराने में विश्वास नहीं रखता।
यमन की नेशनल सल्वेशन सरकार ने कहा है कि यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने मारिब शहर में मंसूर हादी की एक जेल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अल मयादीन टीवी की रिपोर्ट के अनुसार यमन की नेशनल सल्वेशन सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने मारिब शहर की एक जेल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और 9 ऐसे कैदियों को आज़ाद कर दिया जिन्हें रियाज के एजेंट सऊदी अधिकारियों के हवाले करने वाले थे। यमनी सेना और स्वयंसेवी बल के जवान मारिब शहर के पूर्वी भाग और सऊदी अरब से लगे सीमावर्ती क्षेत्र अलवादिया की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और यमनी सेना और स्वयंसेवी बल मारिफ शहर से अब केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों की तेज प्रगति को देखते हुए सऊदी गठबंधन ने भी भारी संख्या में अपने सैनिक रवाना किए हैं, जबकि गठबंधन की वायुसेना अब तक मारिफ में यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों पर दसियों हमले कर चुकी हैं।
इसराइल के पूर्व कूटनयिक और अमेरिका में इसराइल के पूर्व राजदूत का कहना है कि बाइडेन वास्तव में ज़ायूनी हैं। अमेरिका में इसराइल के पूर्व राजदूत ने अमेरिकी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के लिए तेल अवीव क्षेत्र में उसका विशेष सहयोगी समझा जाता है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायूनी शासन के पूर्व राजदूत ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक वास्तविक ज़ायूनी है और इसराइली ज़ायूनी सरकार की रक्षा के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं। इसराइली समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2002 से 2006 तक अमेरिका में इसराइल के राजदूत रह चुके डैनी ने कहा है कि जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच संपर्क में विलंब की कोई खास वजह नहीं है।
अमरीकी सैनिकों का एक कारवां जिसमें सैन्य उपकरणों से भरे बहुत से ट्रक शामिल हैं उत्तरी सीरिया के हस्का क्षेत्र में पहुंचे हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के अनुसार स्थानीय सूत्रों ने सोमवार को ऐलान किया है कि अमरीकी सैनिकों के सैन्य उपकरणों से भरे 25 वाहन हस्का प्रांत के अल मालिकिया नगर में स्थित खराब अलजीर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पर उनकी गैरकानूनी छावनी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इराक से सैन्य उपकरणों से लदे अमरीकी सैनिकों के सैकड़ों वाहन सीरिया से हस्का क्षेत्र में पहुंचे हैं। सीरिया पिछले 9 वर्षों से पश्चिम और अरब देशों का समर्थन प्राप्त आतंकी गुटों की गतिविधियों का साक्षी रहा है। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्री ने म्यांमार की सेना के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। रॉयटर के अनुसार एंटोनी ब्लिंकन ने सोमवार को ट्वीट किया है, अमरीकी विदेश मंत्री ने इस ट्वीट में सैन्य तख्ता पलट का विरोध करने वाले दो प्रदर्शनकारियों की सेना के हाथों हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि म्यांमार में सैन्य विद्रोह करने वालों और हिंसा फैलाने वालों को संयुक्त राज्य अमरीका बहुत कड़ा जवाब देगा। अमरीकी विदेश मंत्री का यह बयान म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का विरोध करने वालों के विरुद्ध सेना की कार्रवाई में दो प्रदर्शनकारियों की हत्या तथा म्यांमार की सेना के विरुद्ध अमरीका के प्रतिबंध लगाने की घोषणा के 10 दिनों के बाद सामने आया है। इसी बीच अमरीका के वित्त मंत्रालय ने म्यांमार की सेना के दो वरिष्ठ कमांडरों के विरुद्ध प्रतिबंधों की धमकी देते हुए कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हिंसा नहीं रुकती है तो फिर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि म्यांमार की सेना ने इस देश में कई नेताओं को नजरबंद करने के बाद 1 फरवरी को वहां की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोतो, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यमन की बहादुर व साहसी सेना मारी प्रांत की ओर आगे बढ़ रही है और उसने इस प्रांत को 3 तरफ से घेर लिया है। यमनी सेना के नेतृत्व ने कहा है कि इस देश पर हमला करने वालों को मारी प्रांत में अपनी पराजय का आभास हो चुका है।
تقدم عسكري كبير باتجاه مدينة
भारत के केंद्र शासित प्रदेश पाडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। دوستو جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ زائونی بہت کرودھت ہیں، وہ مہینوں سے بنیامین نیتن یاہو کی سرکار کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں۔ زائونی نیتن یاہو کو ستا سے ہٹائے جانے اور ان پر مقدمہ چلائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں۔
وصل الاسرائیلیون للاسبوع الخامس،
یہ تھے ہماری آج کی چرچا کے وشے۔ شوتاو، یمن کی بہادر و ساہسی سینا ماری پرانت کی اور بڑھ رہی ہے اور اس نے اس پرانت کو تین طرف سے گھیر لیا ہے۔ سینا کے نیتت نے کہا ہے کہ اس دیش پر حملہ کرنے والوں کو ماری پرانت میں اپنی ہار کا آبھاس ہو چکا ہے۔ یمن پر حملہ کرنے والوں نے ماری پرانت سے یمنی سینا کا دھیان ہٹانے کے لیے البیضہ پرانت میں لڑائی تیز کر دی ہے تاکہ کسی بہانے یمنی سینا کی پرگتی کو روکا یا کم کیا جا سکے۔ گیات رہے کہ یمنی سینا کے نیتت نے اتکرمن کاریوں کے خدیڑنے تک وبھن چھیتر میں سین آپریشن کے جاری رہنے پر بل دیا ہے۔ عبداللہ یوسفی کی رپورٹ پیش کریں، ساتھ ہی محمد علی قومی۔
یمنی سینا ماری پرانت کے پورو میں آگے کی اور بڑھ رہی ہے۔ یمنی سینا کے نیتتو نے اتکرمن کاریوں کے خدیڑنے تک وبھن چھیتروں میں سین آپریشن کے جاری رہنے پر بل دیا۔ یمنی سینا کی ہت پرپ کر دینے والی کارروائی اس بات کا کارن بنی کہ بہت سے اتکرمن کاری سینکوں نے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ یمنی سینا کے سامنے آتم سمرپن کر دیا۔ معارب پرانت میں داخل ہونے کا فیصلہ یتھاوت راجنیتاؤں کے ہاتھ میں ہے اور اس پرانت کے قبائلی سردار ودیشی لڑاکوں اور اتکرمڑکاریوں کو یدھرت شیتروں کو چھوڑ دینے کے لیے بادھ کر دینے کے پریاس میں ہیں۔ یمن کے سوئم سیوی سینا کے جوان اور یمنی سینا نے معارب پرانت کو تین اور سے گھیر لیا ہے۔ یمنی سینا کی پرگتی اس بات کا کارن بنی ہے کہ داعش کے آتنکوادی تتو سہایتا کا نویدن کریں۔ دوسری اور سعودی عرب اور سنیکت عرب امارات نے ماری پرانت کے مورچے سے دباؤں کو کم کرنے کے لکش سے زالے پرانت میں ہونے والی لڑائیوں میں گتی پردان کر دی ہے۔ یہ سین آپریشن یمنی سینا کی پرگتی کا سوچک ہے تاکہ وہ تیل اور گیس کے سروتوں سے سمپن دیش کے اتری شیتروں کو آزاد کرا سکے۔ یمن یدھ کے آرمبھ سے داعش کے تتو سعودی سینکوں کے ساتھ مل کر یمنی سینا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم نے داعش اور القاعدہ کے تتو کو البیضہ پرانت میں مات دے دی ہے۔ واسطوں میں ہم امریکہ اور برٹین دوارا پوشت آتنکوادیوں سے لڑ رہے ہیں۔ آتنکوادی ہمیشہ اپنے آڈیو اور ویڈیو سندیشوں میں یمنی سینا سے لڑنے پر بل دیتے ہیں۔ حملہوروں کو ماری پرانت میں اپنی پراجے کا آبھاس ہو گیا ہے، پرنتو وہ ماری پرانت میں اپنی سینک حالت کو بہتر کرنے کی پرتیکشا میں ہیں تاکہ اس کے بعد وارتا کریں۔ اس کے ساتھ ہی یمن میں برٹین کے انوپستھت راجدوت نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی بکری پر بل دیا۔ یمن کے راشٹری ایکتا سرکار کی ودیش منتری نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ یمنی سینا پرتی دن میزائل اور ڈرون حملے وشیش کر سعودی عرب کے بھیتر کر سکتی ہے، کنتو وہ چاہتی ہے کہ یدھ ویرام کی بھومی سمتل ہو۔ یہ ایسی استھتی میں ہے جب حملہور دیش یمنی جنتا کے دھیرے کا درپیوگ کر رہے ہیں۔ سنا سے آئی آر آئی بی کے لیے عبداللہ یوسفی کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت کے کیندر شاست پردیش پاڈوچیری میں کانگریس کی سرکار گر گئی ہے۔ راج کے مکھیہ منتری اپنا بہومت سدھ نہیں کر سکے، اس پرکار ان کی سرکار گر گئی۔ پوری جانکاری کے ساتھ دلی سے شمشاد کاظمی۔
بھارت کے کیندر شاست پردیش پاڈوچیری میں बीते कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट के बाद आखिरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी सोमवार को बहुमत सिद्ध नहीं कर सके और उन्होंने अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। कुछ समय बाद वे राजभवन पहुंचे और उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया।
In fact, the three nominated members have no voting right. After I completed the speech, the issue was raised by Sri Anandaraman, my government whip, stating that the three nominated members who have been used by BJP to topple out, giving them voting right, and nowhere in the confidence motion, nominated members have got a voting right. But the speaker did not agree. Therefore, we said that we are walking out of the office and we are going to tender the
resignation. Narayan Sami ne apni sarkar girne ka ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा और भाजपा के तीन नॉमिनेटेड विधायकों को सदन में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने का प्रयास किया। नारायण स्वामी ने ये आरोप भी लगाया कि पुडुचेरी पर हिंदी अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में हम दो भाषाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन भाजपा हम पर जबरन हिंदी थोपना चाहती है। नारायण स्वामी सरकार का संकट 25 जनवरी को शुरू हुआ था, जब एक मंत्री और एक विधायक ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और 15 और 16 फरवरी को कांग्रेस के दो और विधायकों ने भी विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के एक विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पिछले साल जुलाई में ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 16 फरवरी को कांग्रेस के चौथे विधायक का इस्तीफा होते ही केंद्र की मोदी सरकार हरकत में आ गई और आनन फानन में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया और फिर नई उपराज्यपाल सुंदर राजन ने सरकार को 22 फरवरी को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया। नारायण स्वामी ने अपनी सरकार के बहुमत में होने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस के एक और विधायक के त्याग पत्र और सहयोगी दल डीएमके के एक विधायक के इस्तीफे के बाद नारायण स्वामी की सरकार पूरी तरह अल्पमत में आ गई और उसका सरकार बचाना मुश्किल हो गया था। कर्नाटक के बाद पुडुचेरी से विदाई के साथ ही कांग्रेस दक्षिण से बेदखल हो गई है, जहां कभी उसकी स्थिति मजबूत थी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस को ये तीसरा झटका लगा है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, ज़ावनी बहुत क्रोधित है। वे महीनों से नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़ावनी नेतन्याहू को सत्ता से हटाए जाने और उन पर मुकदमा चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। ज़ावनियों का कहना व मानना है कि भ्रष्टाचार, निर्धनता और नस्ल भेद नेतन्याहू की सरकार की पहचान है। खालिद सबरना की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही अख्तर अब्बास।
ज़ायोनियों ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ लगातार 35वें सप्ताह प्रदर्शन किए। निर्धनता, भ्रष्टाचार और नस्ल भेद नेतन्याहू के शासन का भाग और अलामत है। ज़ायोनी नेतन्याहू पर आरोप लगाते हैं कि वे समस्याओं से बचने के लिए इसका आरोप दूसरों के सिर मढ़ते हैं। ज़ायोनियों को नेतन्याहू के मंत्रिमंडल से बारंबार निराशा हुई है। वो व्यक्तिगत और लिकुड पार्टी के हितों को दृष्टि में रखकर फैसला लेते हैं। उन्हें बहुत अधिक आरोपों का सामना है। ज़ायोनियों ने अतिग्रहित कुद्स और तेल अवीव में नेतन्याहू की कार्रवाइयों को चुनावी लाभ उठाने का प्रयास बताया और जल्द से जल्द उन पर मुकदमा चलाए जाने की मांग की। ज़ायोनी हर सप्ताह नेतन्याहू के सत्ता में बने रहने और उनकी विफल नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। ज़ायोनी नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हैं, वे एक ही लक्ष्य से किए जा रहे हैं और वो नेतन्याहू को सत्ता से हटाए जाने और उन पर मुकदमा चलाए जाने की मांग है। खालिद सबरना, IRIB न्यूज, फिलिस्तीन।
یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز. شوتو ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 7445 کل ہرٹز پر سن رہی ہیں. ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آ رہا ہوگا. کاریکرم کے بارے میں اپنے وچاروں سجھاؤں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائے گا. ہمارا پتہ نوٹ کر لیں, ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir, جبکہ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi. شوتاؤ ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا جل سنکٹ پر, اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم وشوا درپن.
विश्व दर्पण. दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है. रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए. आज हम चर्चा करेंगे परमाणु समझौते में वापसी को लेकर बाइडेन प्रशासन कितना गंभीर, इसके बारे में हमारे साथ बने रहें. بیس جنوری کو امریکہ کے راشٹرپتی کے روپ میں شپت گرہن کے ٹھیک ایک مہینے بعد جو بائیڈن نے پہلی بار ایک بڑے انتراشٹری منچ سے امریکہ اس بیک کے ساتھ وش میں امریکہ کے ونواس کی سماپتی کا اعلان کیا.
I'm sending a clear message to the world. America is back. The transatlantic alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together.
ایران کے پرمانو سمجھوتے سمیت امریکہ کو مہتوپورن ویشوک سمجھوتوں اور سنستھاؤں سے باہر نکالنے والے اپنے پوروورتی ڈونالڈ ٹرمپ کی الگاؤوادی ودیش نیتی سے الگ ورچوئل میونیک سرکشا سمیلن میں جی 7 کے نیتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے بائیڈن نے پیرس جلوایو سندھی سمیت بہوپکشیے سمجھوتوں میں واشنگٹن کی واپسی کی بات دہرائی. بائیڈن کا کہنا تھا کہ ان کا پرشاسن 5+1 دیشوں کے انترگت پھر سے وارتا میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے.
Let me erase any lingering doubt. The United States will work closely with our European Union partners and the capitals across the continent.
دراصل بائیڈن اور ان کے ادھیکاری یورپی دیشوں کے ساتھ مل کر پرمانو سمجھوتے کو پنرجیوت کرنے کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن اس بارے میں وہ امریکہ کی استھتی کو پوری طرح اسپشٹ نہیں کر رہے ہیں اور تہران کی شرط کا سیدھا جواب دینے سے بھی کترا رہے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر سے لے کر راشٹرپتی اور ودیش منتری تک صاف طور پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ منمانے ڈھنگ سے کسی بھی انتراشٹریہ سمجھوتے کی دھجیاں ادھیڑنے اور پھر بنا کوئی ویوہارک قدم اٹھائے اس میں واپس لوٹنے کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے. امریکہ اور یورپ دوارا تہران میں پرمانو سمجھوتے پر پناہ پورن روپ سے عمل کی مانگ کے جواب میں ایرانی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کا الگھن امریکہ نے کیا ہے, اس لیے پہلے وہ اپنی غلطی سدھارے اور ٹرمپ دوارا لگائے گئے سبھی پرتیبندھ ہٹائے, اس کے بعد ایک بار پھر ایران سمجھوتے کو پورن روپ سے لاگو کرنے کے لیے تیار ہے. اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے کہا کہ امریکہ اور تین یورپی دیشوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پرمانو سمجھوتے کو لے کر کوئی شرط رکھیں, کیونکہ انہوں نے اس سمجھوتے کے پرتی اپنے وعدوں پر کسی بھی طرح کا کوئی عمل نہیں کیا ہے.
اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم, بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند, اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند.
लेकिन बाइडन प्रशासन हाथ में फूल और बगल में छुरी लेकर विश्व में अमेरिका की खराब छवि में सुधार करने और ट्रंप नामक भूत से छुटकारा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ईरानी अधिकारियों को वाशिंगटन की नीयत पर संदेह है, जो किसी हद तक बिल्कुल जायज है। अमेरिका कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को लेकर विश्व समुदाय का भरोसा तोड़ चुका है और अब उसे एक भरोसेमंद पक्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके बावजूद बाइडेन प्रशासन घिसी पिटी चालों और कूटनीतिक हथकंडों के जरिए विश्व समुदाय की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। हालांकि ईरानी अधिकारी विशेष रूप से सुप्रीम लीडर विश्व समुदाय को ये समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि अमेरिका किसी भी स्थिति में भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वे बातों और वादों के झांसे में आने वाले नहीं हैं, बल्कि उनकी निगाहें कदमों पर होंगी कि वो उठ भी रहे हैं या नहीं। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा कि अमेरिका पहले सभी प्रतिबंधों को समाप्त करे और उसके बाद हम उसकी वास्तविकता की जांच करेंगे और अगर वास्तव में प्रतिबंध समाप्त हो गए होंगे तब हम भी अपने वादों पर अमल करेंगे।
अगर میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده باید آمریکا تحریم ها رو کلا لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن.
बाइडेन जब ये कहते हैं कि अमेरिका परमाणु समझौते में शामिल होना चाहता है और उनके विदेश मंत्री ये ऐलान करते हैं कि ईरान के खिलाफ गैर परमाणु प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे तो वाशिंगटन के प्रति तेहरान द्वारा अविश्वास जताने पर पश्चिमी दुनिया में हाय तौबा मच जाती है। प्रतिबंध हटाने से पहले तेहरान द्वारा वार्ता के प्रस्ताव को रद्द करने पर अमरीका में फ्रांस के राजदूत रह चुके जेराल्ड अरात का कहना था, किसी भी बातचीत से पहले सीना पीटने का चरण होता है जो हम ईरान की ओर से देख रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि परमाणु समझौते में शामिल तीन यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ट्रंप प्रशासन के सामने कठपुतली बने रहे और उन्होंने बातों और दावों से बढ़कर इस समझौते को बचाने के लिए कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया। परमाणु समझौते में वापसी की इच्छा जताने भर से ही यूरोपीय देश इतने उतावले हो गए कि उन्होंने तेहरान पर पूर्ण रूप से अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं पर अमल करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और अमेरिकी प्रतिबंधों के जारी रहने की स्थिति में ईरानी संसद द्वारा IAEA के साथ सहयोग में कमी के लिए निर्धारित की गई समय सीमा को लेकर धमकी दे डाली। हालांकि ईरानी अधिकारी कई बार तीनों यूरोपीय देशों के अधिकारियों को आईना दिखा चुके हैं और ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वे इस स्थिति में नहीं हैं कि ईरान के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण करें। भारत के वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार सौरभ कुमार शाही से जब पूछा गया कि परमाणु समझौते को लेकर फिर क्यों अमरीका और यूरोपीय देशों की ओर से दोबारा वार्ता की बात कही जा रही है तो उन्होंने इस बारे में जवाब देते हुए कहा,
आपको याद होगा जब ये मुज़ाकरात पहली बार हो रहे थे उसके पहले जो है रहबर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने रूहानी साहब से कहा था कि आप बेशक बात करना चाहते हैं तो बात कर लें लेकिन हमेशा ये याद रखें कि आपको जो है वो वेस्ट जो आपको धोखा देगा। ये मरा ही उस समय हर जगह ये स्टेटमेंट आया था सारे अखबारों में सारे चैनलों में। तो अब हमने देखा कि इन चार सालों में पांच सालों में वो जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल 100% जो है वो सही खड़ा उतर गया। वेस्ट ये चाहता है स्पेशली अमेरिका और किसी वो जो उससे जुड़े हुए ट्रांस एटलांटिक उनके पिछलग्जी ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह का प्रेशर बना के ईरान पे और ईरान को वापस से डील को रीनिगोशिएट करने पर मजबूर किया जाए। पर वो ये भूल रहे हैं कि गुज़िश्ता चार सालों में جو ٹرمپ اور پمپیو اور جو بولٹن اور یہ تمام جو لوگ تھے ان کی جو ایک پالیسی تھی جس کو یہ کہتے تھے کہ میکسیمم پریشر کی پالیسی, جب وہ میکسیمم پریشر کی پالیسی ایران کے اس وقت جو ہے وہ افورڈ یعنی افیکٹو نہیں ہو سکی, تو اب ان کو یہ کیسے لگ رہا ہے کہ اب یہ افیکٹو ہو جائے گی, اور وہ بھی تب جبکہ آئندہ 3-4 مہینوں میں ایران میں پریزیڈنشل الیکشن ہونے والے ہیں جس میں کی امید ہے کہ شاید جو کوئی دوسرا خیمہ ہے وہ سپتا میں آ جائے. تو ان کی جو یہ مسکیلکولیشن ہے وہ بیک فائر ہونے جا رہی ہے, اور وہ بیک فائر ہوگی فروری مہینے کے اندر اندر ہی وہ بیک فائر ہو جائے گی جب ان کو پتا چل جائے گا کہ ایران نے ری نیگوشیٹ کرنے سے منع کر دیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اوریجنل ڈاکیومنٹ دیکھیں گے اس ڈیل کی, اس میں ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ بھی ریٹن فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے. تو یعنی جو لکھا ہوا یعنی اس میں یہ جو گرے ایریا ہے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ہے کہ آپ اس میں ادھر ادھر کچھ کر سکیں. تو ایران نے جو بھی اسٹیپ لیے وہ ریئیکشنری ریٹیلیٹری اسٹیپ. یہی ریزن ہے کہ اگر آپ ویسٹرن میڈیا جس کے کی اگر آپ اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی انٹیگریٹی ویسٹرن میڈیا رکھتی ہے, اتنی بری انٹیگریٹی کے باوجود بھی اگر آپ ویسٹرن میڈیا کا بھی کوریج پڑھیں ایرانین نیوکلیئر ڈیل سے, تو تمام انٹیگریٹی کے بنا بھی وہ اس بات کو نہیں لکھ پا رہے ہیں کہ ایران کی اس میں کوئی غلطی.
کل ملا کر یورپی سنگھ کو چاہیے کہ اگلے قدم کے طور پر تتکال روپ سے ایک بیٹھک کا آیوجن کرے جس میں امریکہ سے ایران کے خلاف پرتیبندوں کو ہٹانے کی مانگ رکھی جائے. امریکہ نے یورپ کے ساتھ مل کر پرمانو سمجھوتے پر پھر سے کام کرنے کی سہمتی بھی جتا دی ہے. یورپ کو چاہیے کہ اس ایتہاسک اوسر سے لابھ اٹھائے اور پور کی اپنی غلطیوں میں کسی حد تک سدھار کرے. شکروار کو ایرانی ودیش منتری جواز ظریف نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ سجھاؤ دیا کہ امریکہ ابھی بہت دور نہیں گیا ہے اور وہ چاہے تو پرمانو سمجھوتے کو پنرجیوت کرنے کے لیے تتکال روپ سے کچھ اپائے کر سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے دہرایا کہ ایران پہلے پرتیبندوں کو ہٹانے کی اپنی شرط سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ظریف نے ایک ہیش ٹیگ کا بھی استعمال کیا ہے جس کا ارتھ ہے کہ امریکہ کو پہلے عمل کرنا ہوگا, اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. دوستوں کاریکرم کا سمے اب یہیں سماپت ہوتا ہے, ہمیں انومتی دیجیے, خدا حافظ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم.
جل سنکٹ.
دوستو جل سنکٹ کے کنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے. آج ہم سوکھے پر विस्तार से चर्चा करेंगे।
दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों को हमेशा ही तरह तरह की आपदाओं का सामना रहा है। इन आपदाओं में से कुछ तो प्राकृतिक कारणों से होती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि, लेकिन कुछ आपदाओं के पीछे मौसम और विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हुआ करती हैं। इन्हीं में से एक सूखा भी है। सूखे से मानव जीवन और इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। सूखा वास्तव में मौसम की देन है और इसकी मार से दुनिया के बहुत कम क्षेत्र बचे हैं। सूखा जहां आता है वहां तबाही फैल जाती है और उसके प्रभाव बहुत समय तक बाकी रहते हैं।
दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से खाद्य सामग्री की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए अधिक खाद्य सामग्री के लिए अधिक खेती की और अधिक खेती के लिए अधिक जमीनों की जरूरत है। अधिक जमीन उपलब्ध कराने के लिए तालाब, चरागाहें और जंगल कम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम में जो बदलाव आ रहा है, मौसम का ये बदलाव उपजाऊ जमीनों को कम कर रहा है। इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध व सामाजिक समस्याएं सब मिलकर मानव समाज को पीछे की ओर ढकेल रही हैं।
हालिया दशकों में सूखा एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, क्योंकि इंसानों की जान और अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसका व्यापक नुकसान होता है। इसलिए अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में इसे अधिक विनाशकारी समझा जाता है। सूखा वो आपदा है जिसके दौरान अन्य आपदाओं की तुलना में राहत कार्य काफ़ी अधिक जटिल हो जाता है। सूखे की बहुत सी परिभाषाएं हैं, मगर प्रायः सूखा उस समय आता है जबकि एक निर्धारित अवधि तक वर्षा न हो। सूखा लगभग हर क्षेत्र में आता है, लेकिन यह हर इलाके में अलग अलग तरह से प्रकट होता है। सूखा मानव जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है, इसीलिए सूखे और उसके विभिन्न रूपों तथा प्रभावों को समझना बेहद ही जरूरी है। सूखा एक बहुत बड़ी आबादी को भी प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही ये पर्यावरण में बदलाव लाकर आग लगने, बाढ़ आने, आंधी और भूकंप का भी कारण बन सकता है।
सूखे में सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व वर्षा है। वर्षा भूमिगत जलाशयों और जमीन पर पेड़ पौधों के लिए निर्णायक भूमिका निभाती है। कम बारिश की वजह से सूखा पानी के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिसके परिणाम में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जिसके कारण बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी कम होता है, तो ऊर्जा की भी समस्या पैदा हो जाती है। सूखे से जमीन में आर्द्रता कम होती है और मिट्टी सूखने लगती है। ये उस वक्त होता है जब पेड़ पौधों का पानी असाधारण रूप से सूखने लगता है। यही वजह है कि सूखा पूरी दुनिया में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है।
दुनिया के 93 विकासशील देशों में फाओ के अध्ययन से ये पता चलता है कि इन सभी देशों में जल स्रोत कम होते जा रहे हैं। ये कमी ऐसी हालत में है कि इन स्रोतों का कोई भी विकल्प नहीं है। 10 देशों में तो हालात बहुत ही संकटमय हैं। अर्थात ये 10 देश खेती बाड़ी के लिए अपने 40% जल स्रोतों का प्रयोग करने पर मजबूर हैं। 8 अन्य देशों को पानी की गंभीर समस्या का सामना है। ये देश भी अपने पास उपलब्ध पानी के स्रोतों का 40% भाग कृषि के लिए प्रयोग करने पर मजबूर हो चुके हैं। हालांकि विकासशील देशों में सिंचाई की शैलियों में सुधार पैदा करके और बारिश के पानी से लाभ उठाकर अनाज पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खेती बाड़ी के लिए मुख्य स्रोत देश के जल भंडार होते हैं, क्योंकि वर्षा कम ज्यादा होती रहती है। यही वजह है कि जलवायु विशेषज्ञ डोनाल्ड विलहेल्म और एटमॉस्फेयर के विशेषज्ञ माइकल ने अपने एक शोध पत्र में सूखे की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया है। इन सब का आधार मौसम, पानी, कृषि और अर्थव्यवस्था व समाज संबंधी 4 चीजों को बताया गया है।
जलवायु विशेषज्ञों की नज़र में सूखा उस समय होता है जब हमेशा से कम बारिश हो। इस तरह से जलवायु विशेषज्ञों की नज़र में सूखा वास्तव में वर्षा में कमी का नाम है। वैसे आप ये भी जान लें कि सूखे की परिभाषा हर देश में और हर मौसम में अलग अलग है। इसी तरह विभिन्न विशेषज्ञों ने भी सूखे की अलग अलग परिभाषा पेश की है। जल विज्ञान ज्ञान की एक शाखा है जिसमें धरती के ऊपर और उसके गर्भ में मौजूद पानी और जल चक्र पर चर्चा की जाती है। चूंकि सूखा कम बारिश की वजह से होता है, इसलिए जल वैज्ञानिक इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि पानी की यह कमी जल चक्र में क्या भूमिका रखती है। सूखे प्रायः सदियों में होने वाली वर्षा में कमी से होता है। इसके अलावा भी अधिक तापमान, तेज हवा और कम आर्द्रता जैसे बहुत से अन्य कारण भी सूखे में प्रभावी होते हैं। जन विज्ञान के लिहाज से नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्रोतों को नापने से सूखे का पता चलता है। इस तरह से जल विज्ञान सूखे का पता उस समय चलता है जब भूमिगत जल और नदियों व झीलों में पानी कम हो जाए और इन जगहों पर पानी कम वर्षा के तत्काल बाद नहीं बल्कि धीरे धीरे और समय के साथ कम होता है।
कृषि के लिहाज से जब मिट्टी की नमी ज़रूरत से कम हो और उससे फसल तबाह होने लगे तो वो सूखा होता है। इस आधार पर किसानों की नज़र में सूखा फसलों पर आधारित है और हर फसल के हिसाब से सूखा पड़ता है। इसलिए किसानों की नज़र में सूखा जलवायु विशेषज्ञों की नज़र में सूखे के बाद और जल वैज्ञानिकों की नज़र में सूखे से पहले पड़ता है। जलवायु विशेषज्ञ कम वर्षा के बाद सूखे का ऐलान करते हैं जबकि जल वैज्ञानिकों की नज़र में सूखा उस समय पड़ता है जब जल स्रोतों में कमी हो जाए। लेकिन किसान की फसल अगर सूखने लगे और पानी की कमी से उसकी खेती को नुकसान पहुंचने लगे तो उसके लिए सूखा पड़ जाता है। लेकिन खेती की वो पहला क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले सूखे का प्रभाव नज़र आता है। किसानों के लिए सूखा पूरी तरह से पानी की कमी से संबंधित है। किसानों को अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि हर पौधा अपनी ज़रूरत रखता है और उसे अलग अलग मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है।
आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से सूखा उस समय होता है जब पानी की कमी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का कारण बन जाए। इसलिए सूखे के नुकसान को कम से कम करने के लिए बेहतर प्रशासन और प्रभावी कार्यक्रम की बहुत अधिक जरूरत होती है क्योंकि सूखे की विनाश लीला अन्य किसी भी आपदा से अधिक बड़ी और व्यापक होती है। इसी तरह इसके आर्थिक व सामाजिक प्रभाव भी सूखा खत्म होने के बाद भी बहुत समय तक बाकी रहते हैं। इसी तरह सूखा पानी के लिए लड़ाई का कारण बनता है क्योंकि जब दुनिया में पानी कम होगा तो विभिन्न देश जल स्रोतों पर कब्जे के लिए युद्ध करने पर तैयार हो जाएंगे, जैसा कि दुनिया के कई संवेदनशील क्षेत्रों में पानी के लिए युद्ध शुरू भी हो चुका है।
सूखे के प्रभावों और परिणामों को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। सूखे की वजह से हवा मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। रेगिस्तान में विस्तार होने लगता है। पानी की कमी की वजह से पंछी पलायन कर जाते हैं। झीलों और तालाबों में पानी की कमी की वजह से बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं। इन सब के अलावा सूखा मानव जीवन पर भी गहरे प्रभाव छोड़ता है क्योंकि ये विभिन्न रोगों का कारण भी बनता है। फेफड़े का संक्रमण, शरीर में पानी की कमी, कुपोषण, भुखमरी, पलायन, शिक्षा का अभाव, यहाँ तक कि युद्ध जैसी समस्याएं सूखे का ही परिणाम हो सकती हैं।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम को 5वीं सदी ईसा पूर्व में ईरान के हकामनी सम्राट डेरियस के कथन से खत्म कर रहे हैं, जिसे ईरान में दारियुश के नाम से जाना जाता है। डेरियस की ये दुआ ईरान के शिराज नगर के पास स्थित तख्त जमशीद या पेर्सपोलिस में आपदाना नाम का एक महल की दक्षिणी दीवार पर एक शिलालेख में मिला है, जिस पर तीन चीज़ें लिखी हैं जो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। उस शिलालेख पर ईरान के सम्राट डेरियस की ये दुआ लिखी है, हे ईश्वर, इस देश को दुश्मन सूखे और झूठ से बचा ले। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, यह प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। सभा के अंत में मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर सुन लें। ईरानी राष्ट्रपति ने तुर्क राष्ट्रपति को अमरीकी प्रतिबंधों से मुकाबले का नुस्खा सुझाया है। कल से ईरान एडिशनल प्रोटोकॉल पर अमल को रोक देगा। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। भारत में पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर बवाल मच रहा है। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.